हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चौहान फैमिली में अच्छी खासी आग लगाने के बाद अंकुश और गीतिका वापस गायत्री के साथ उनकी हवेली लौट चुके थे। वहां पहले से ही गीतिका के मॉम डैड मिस्टर विजय राजावत और उनकी पत्नी प्रतिभा राजावत गुस्से में उन्हीं के आने का इंतजार कर रही थीं। ये परिवार गायत्री के दूसरे बेटे का था, लेकिन दोनों परिवारों में बिल्कुल नहीं बनती थी। विजय सिंह चौहान वेद के पिता मिस्टर भरत सिंह चौहान के छोटे भाई थे, जो उम्र में लगभग 52 साल के थे। जैसे ही गायत्री के साथ अंकुश और गीतिका ने घर में कदम रखा, विजय ने तेज आवाज में कहा, वहीं रुक जाइए, क्या जरूरत है यहां आने की, वैसे भी आपका उनका मोह जाता कहां है माँ। गायत्री देवी ने उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना किया और गीतिका को उनकी व्हीलचेयर अंदर लाने को कहा। अंदर आते ही गीतिका ने विजय से काफी पोलाइट हुए में कहा, पापा आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं वेद भैया की पत्नी कौन है। वो राजावत खानदान की होने वाली बहू थी, जिसे उसने किडनैप करके अपनी पत्नी बना लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी पत्नी किसी की होने वाली बहू हो या नौकरानी, माँ का तो समझ आता है, लेकिन तुम कैसी बेटी हो, अच्छे से जानती हो कि उसने तुम्हारे पापा के साथ क्या किया था, फिर भी तुम मुंह उठाकर वहां पर चली गई। विजय ने अपने गुस्से में गीतिका को भी डांट दिया। अंकुश आगे आते हुए बोला, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ पापा, लेकिन हमें भी उस वेद को बेनकाब करना जरूरी था, और तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग जाकर वहां उसके परिवार के सामने सच बताओगे और वो सब अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लेगा। वेद अगर झूठ भी बोलेगा तो उसके भाई बहन इस पर यकीन करेंगे, वो भी आंखें बंद करके, प्रतिभा ने तुनक कर कहा। सच नहीं बताया, लेकिन हमने उसे धर्म संकट में डाल दिया है। हमने वेद के भाई बहनों के मन में ये बात डाल दी है कि वो शिवांशा को सबके सामने इंट्रोड्यूस करें और एक ग्रैंड पार्टी थ्रो करें। मुझे नहीं लगता कि वेद ऐसा कुछ करेगा, ये एक नकली शादी है। घर की चार दीवारी में एक अनजान लड़की को पत्नी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पार्टी थ्रो करके खास उसी को इंट्रोड्यूस करना, वेद सिंह चौहान ऐसा कभी नहीं करेगा, अंकुश ने उन्हें सब समझाते हुए कहा। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले गायत्री देवी ने अपनी तेज और सख्त आवाज में कहा, बस करो तुम सब, अगर वो लड़की सच में वेद की दुल्हन है तो कोई कुछ नहीं करेगा। मैं इन लोगों के साथ गई क्योंकि अंकुश और गीतिका ने आकर मुझे यही बताया था कि वो लड़की देवराज ठाकुर की पोती है और वेद की उससे शादी नहीं हुई है। देवराज ठाकुर का नाम आते ही वहां सबके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए थे। विजय ने कुछ भी कहने से पहले एक नज़र अंकुश की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया था। विजय, जो अब तक गुस्सा कर रहा था, अचानक उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उसी अंदाज में बोला, अगर ऐसा है और वेद के घर वालों को सच का पता नहीं तो ये रिसेप्शन पार्टी वाकई कमाल की रहने वाली है, वो हमें कभी इनवाइट नहीं करेगा, लेकिन इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। जब उस लड़की की सच्चाई सबके सामने आएगी तब देखता हूँ वेद किसको क्या सफाई देता है, खासकर अपने भाई बहनों को जो उसे राम समझकर उसकी पूजा करते हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि वेद आखिर देवराज ठाकुर की पोती से शादी क्यों करेगा, उसने तो उनके पूरे खानदान तक को बर्बाद कर दिया था, फिर ये पोती कहाँ से आ गई, और वो लड़की जिसके पूरे परिवार को वेद सिंह चौहान ने बर्बाद किया है वो उस इंसान के साथ रह भी कैसे सकती है, प्रतिभा ने अफसोस जताते हुए कहा। गायत्री देवी के चेहरे के भाव भी सख्त हो गए थे, उन्होंने मायूस होकर कहा, वेद ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया था, भरत और उसकी पत्नी के साथ मेरी लाख बहस होती हो, लेकिन उस आदमी ने मेरे बेटे और बहू को मारा था, अगर सच में वो लड़की उसका अंश है तो मैं खुद उस लड़की की जान ले लूंगी। गीतिका अपने पेरेंट्स से बात करने में लगी हुई थी, वहीं अंकुश के चेहरे पर ईविल स्माइल थी, वो इन सब में काफी खुश था, वो जो चाहता था वही हो रहा था, उसने वेद के खिलाफ पूरी फैमिली को भड़का दिया था, ऊपर से शिवांशा से भी सब नफरत करने लगे थे, वो यही चाहता था कि शिवांशा का कोई सहारा न रहे और आखिर में उसे अपने बुरे मंसूबे पूरे करने का मौका मिल जाए। उनकी बातचीत में दखल देते हुए अंकुश ने कहा, अच्छा गीतिका, तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ, मुझे घर जाना होगा, चौहान पैलेस हवेली के पास ही है, तो हो सके तो शिवांशा पर नजर रखना, मैं आपसे कहने ही वाली थी, वैसे भी आपके घर का माहौल काफी अजीब हो रखा है, मेरे लिए ये सही नहीं है, गीतिका ने सिर हिलाकर कहा और फिर अपने पेट पर हाथ रख लिया था। वो 2 महीने प्रेग्नेंट थी। अंकुश ने मुस्कुराकर हामी भरी और उन सबको बाय बोलकर वहां से निकल गया था। जैसे ही वो चौहान हवेली से बाहर निकला, उसकी नजर सामने आ रहे अरमान और मनन पर पड़ी। वो उन्हें देखकर वहीं पर छुप गया था। अरमान और मनन दोनों इस वक्त चौहान पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे। अंकुश ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है वेद सिंह चौहान पर सारे बम एक साथ फूटने वाले हैं। बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं ये दोनों। जरूर शिवांशा से मिलने के लिए आए होंगे। बस वो बेवकूफ लड़की उनके सामने कुछ बक ना दे। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात भी अंकुश की मदद करते हुए शिवांशा के खिलाफ हो गया था। पहले विजय की फैमिली को ये पता चलना कि शिवांशा देवराज ठाकुर की पोती है, तो उसके बाद में अरमान और मनन का यूं शिवांशा से मिलने आना, सब शिवांशा के खिलाफ ही जा रहा था। अरमान और मनन के वहां से हटते ही अंकुश तुरंत चला गया। वहीं शाम के लगभग 6:30 बजे के करीब अरमान और मनन चौहान पैलेस के आगे खड़े हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें वहीं पर रोक लिया था। सॉरी सर, मैं आपके अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। चौहान पैलेस में किसी तरह की प्रोफेशनल मीटिंग नहीं होती है और ना ही यहाँ अनजान लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है, गार्ड ने उन्हें रोकते हुए बोला। अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन हम अनजान नहीं हैं, हम शिवांशा के रिश्तेदार हैं, हमें उससे मिलना है। शिवांशा को भले ही वहां आए हुए ज्यादा टाइम ना हुआ हो, लेकिन वो कौन थी ये सब जान चुके थे। अरमान की बात सुनकर गार्ड ने दूसरे गार्ड की तरफ देखा, मानो वो दोनों उलझन में हों कि अरमान को अंदर जाने दें या नहीं। दूसरे गार्ड ने शांत लहजे में कहा, फिर भी मैं बिना सर से बात किए आपको घर के अंदर नहीं जाने दे सकता। ठीक है, फिर तुम बात कर लो, लेकिन आज मैं यहाँ शिवांशा से मिले बिना नहीं जाऊंगा, अरमान ने सख्त आवाज में कहा। मनन भी उसकी बात को दोहराते हुए पीछे पीछे बोला, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम शिवी से मिले बिना नहीं जाएंगे। तुम जाकर शिवी को कहो ना, मनन और अरमान भाई आए हैं, वो खुद आ जाएगी, फिर देखना तुम्हें वो बहुत डांटने वाली है, मनन गार्ड के साथ बहस करने लगा। इस बीच नव्यांशी को किसी मीटिंग के चलते बाहर जाना था। उसने गेट पर बहस देखी तो वो उस तरफ आ गई थी। वहीं नव्यांशी को देखते ही दोनों गार्ड साइड हो गए थे। नव्यांशी उनके पास आई और उन दोनों को घूरते हुए देखा। गार्ड ने नजरें झुकाकर कहा, मैडम, ये खुद को नई मालकिन के रिश्तेदार बता रहे हैं और उनसे मिलने की जिद कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं देखती हूँ इन रिश्तेदारों को। नव्यांशी ने उन्हें जाने का इशारा किया और फिर उनके हटते ही वो अरमान और मनन के पास आई। ऐसा नहीं था कि नव्यांशी के लिए अरमान का चेहरा नया हो। उसने एक नज़र अरमान की तरफ देखा। वो हाइट में लगभग 5 फीट 11 इंच के आसपास था। गेहुआ रंग, शार्प फेशियल फीचर्स और चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव, उसका एटीट्यूड बिल्कुल नव्यांशी की तरह लग रहा था।
जबकि अरमान ने पहली बार नव्यांशी को देखा था, चौहान फैमिली से, राजावत फैमिली से रायवली उससे छुपी हुई नहीं थी। कभी उसने चौहान फैमिली के बारे में जानने की कोशिश नहीं। उस परिवार की इकलौती बेटी थी नव्यांशी, जो उम्र में 27 साल की थी। गोरा रंग, 5 फुट 6 इंच हाइट, काली बड़ी आंखें और बिल्कुल स्ट्रेट बाल। वो एक मीटिंग में बाहर जा रही थी, इसलिए उसने ऑफ वाइट कलर का ऑफिस सूट पहना हुआ था। उस प्रोफेशनल लुक में भी नव्यांशी काफी खूबसूरत लग रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। तभी मनन ने कहा, मेरी शिवी कहाँ है? तुम लोगों ने उसे अपने घर पर बांध के रखा है। अरमान, पुलिस को बुलाओ, इन गंदे लोगों को हम जेल के अंदर बंद करवा देंगे। मनन के हाव भाव और उसकी बातों से पता चलता था कि वो मानसिक रूप से बाकी लोगों जितना मैच्योर नहीं था। ऊपर से इसकी बातों ने ये प्रूफ कर दिया था। मनन की बात सुनकर नव्यांशी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने सिर हिलाकर कहा, तो इसका मतलब भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने हमेशा यही सुना था कि तुम अपनी फैमिली से अलग रहते हो क्योंकि तुम्हें उनके तौर तरीका पसंद नहीं है, लेकिन तुम भी उनके जैसे निकले। एक अच्छी खासी लड़की की शादी अपने पागल भाई से करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। मैं पागल नहीं हूं, मनन जल्दी से बोला। वो उसे गुस्से में घूर रहा था। मनन को ये सब सुनने की आदत थी, फिर भी उसे गुस्सा आ जाता था। लेकिन अरमान के सामने कोई उसे गलती से भी पागल कह देता, उसे ये कभी बर्दाश्त नहीं था। अरमान ने नव्यांशी को वार्निंग फिंगर दिखाते हुए कहा, डोंट यू डेयर, मुझे यहाँ किसी ऐरे गैरे से बहस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं यहाँ शिवांशा से बात करने आया हूँ और उससे बात किए बिना नहीं जाऊँगा। अच्छा, और किस हैसियत से आप यहाँ मेरी भाभी से मिलने आए हो? नव्यांशी ने भौहें चढ़ाकर कहा। उसका बड़ा भाई होने की हैसियत से। अब साइड हटो और जाने दो, मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी होती जिन्हें सामने वाले की मेंटल कंडीशन का मजाक बनाना होता है। अरमान ने नव्यांशी की आंखों में आंखें डालकर कहा। फिर उसने मनन का हाथ पकड़ा और नव्यांशी को साइड में धकेलकर अंदर जाने लगा। हे यू, तुम इस तरह मेरे घर में नहीं घुस सकते हो, नव्यांशी पीछे से चिल्लाकर बोली। वो पैर पटकते हुए उसके पीछे आ रही थी। अरमान ने उसकी तरफ देखे बिना ही तेज आवाज में कहा, मैं भी देखता हूँ कि आज हमें शिवांशा से मिलने से कौन रोकता है। फर्स्ट एंट्रेंस को पार करके अरमान और मनन सेकेंड एंट्रेंस तक पहुंचे ही होंगे कि सामने दरवाजे पर वेद हाथ बांधकर खड़ा था। उसे गार्ड ने कॉल करके बता दिया था कि शिवांशा की फैमिली से कोई उससे मिलने के लिए आया है। सामने वेद को देखकर अरमान वहीं पर रुक गया था। मनन वेद की तरफ घूर कर देख रहा था। अरमान कुछ कहता उससे पहले मनन ने मासूमियत से कहा, मिस्टर वेद सिंह चौहान, मेरी शिवी कहाँ है? आप बहुत बुरे हो जो आपने मेरी शिवी को कैद करके रखा है। आप उसे मुझे वापस कर दो, चाहो तो बदले में मेरी सारी पॉकेट मनी ले लो। वेद ने मनन की तरफ एक नज़र घूर कर देखा और फिर अरमान से कहा, क्या तुमने इसे समझाया नहीं कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बीच में छोटे नहीं बोलते हैं? शिवांशा कहाँ है? अरमान ने सीधे सीधे पूछा। वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, वेद ने जवाब दिया। उसे इस वक्त मेरे घर दिल्ली में होना चाहिए, ना कि यहाँ चौहान पैलेस में। तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के सामने झूठ बोलते हुए कि तुमने शिवांशा से शादी की, जबकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि तुमने? अरमान गुस्से में उस पर बिफर पड़ा, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि नव्यांशी वहां पर आ गई थी। अरमान ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, मुझे कोई बहस नहीं करनी है, मुझे शिवांशा से मिलना है। उससे मिले बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। बहन माना था मैंने उसे, ऐसे कैसे उसे इन हालातों में छोड़कर चला जाऊँ? वेद ने प्रतीक के जरिए शिवांशा के बारे में सब कुछ पता लगवाया था। वो जानता था कि अरमान ही था जो शिवांशा को दिल्ली लेकर गया था। हाँ, उसे उसकी वजह पता नहीं थी। देखा जाए तो वो अरमान ही था जिसके चलते अब तक शिवांशा वेद की नज़रों में नहीं आई थी। वेद ने अपना गुस्सा काबू करने के लिए अपनी मुट्ठियाँ कस के बंद कर ली थी। वो पूरे एटीट्यूड से बोला, ठीक है फिर देख लो कि अपना डेरा कहाँ जमाना है। अंदर तो मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। मैंने कहा कि मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, बस उससे बात करनी है, अरमान ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। वैसे भी वो यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया था, बस उसे शिवांशा से मिलना था। बात भी नहीं कर सकते हो, वेद ने जवाब दिया और फिर वहां से जाने के लिए मुड़ा। तभी अरमान ने पीछे से तेज आवाज में कहा, तो तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं शिवांशा से मिला तो वो पहले की तरह ब्रेव होकर सबके सामने तुम्हारा सच खोल देगी और इससे तुम्हारी इस सो कॉल्ड शादी का सच बाहर आ जाएगा? वेद के कदम वहीं पर रुक गए थे, तो वहीं नव्यांशी हैरानी से अरमान की तरफ देखने लगी। चार दिनों में ये तीसरी बार था जब वेद और शिवांशा की शादी पर उंगली उठ रही थी। वेद उसे जवाब में कुछ कहता उससे पहले शिवांशा वहां पर आ गई थी। वो हरगिज नहीं चाहता था कि शिवांशा अरमान और मनन से मिले। उसने आंखों के इशारे से शिवांशा को वहां से जाने के लिए भी कहा, लेकिन शिवांशा ने ना में सिर हिला दिया था। शिवांशा के मना करने पर वेद सर्द निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। फिर भी न जाने उसे वक्त शिवांशा में इतनी हिम्मत कहां से आई जो वो वेद के साइड से निकलकर अरमान और मनन के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी थी। क्या अरमान शिवांशा को यहां से ले जाएगा या शिवांशा वेद के पास रुककर अंकुश का काम करेगी?